ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने हमें जो पढ़ाई पढ़ाई, उसमें बाबा ने कहा ब्राह्मणों का धर्म है मौज में रहना, और ब्राह्मणों का दिव्य कर्म भी है मौज में रहना, और ब्राह्मणों का लक्ष्य भी है मौज में रहना। तो संगम युग की जो पढ़ाई है वो मौज में रहने की पढ़ाई है। सतयुग में भी पढ़ाई होगी लेकिन इतनी मौज नहीं होगी, और बाद में तो देखो पढ़ाई कैसी हो गई है, आजकल की पढ़ाई कैसी हो गई है, मौज का नाम ही नहीं है। तो आज हम चर्चा करेंगे बाबा की पढ़ाई के जो अलग अलग चार विषय हैं, उन विषयों में कैसे सिद्धि प्राप्त करें, सिद्धि का अर्थ क्या है। तो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। जहां ज्ञान है, समझ है, वहां मनुष्य के जीवन में बाकी सारे गुण भी आ जाते हैं, इसलिए हमने ज्ञान को पहला सब्जेक्ट रखा है। तो पहली पहली समझ बाबा ने हम बच्चों को क्या दी कि आप शरीर नहीं है, आप आत्मा हैं। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, और ज्ञान का भी पहला पाठ है आप आत्मा हैं। आत्मा का ज्ञान भक्ति मार्ग में भी और जो गुरु लोग सिखाते हैं उसमें भी है। विवेकानंद की अगर आप किताब पढ़ेंगे तो हर पन्ने में आपको आत्मा की चर्चा मिलेगी। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, लेकिन इतनी चर्चा मिलेगी कि हम आत्मा है, इससे आगे आत्मा के जन्मों की कहानी या आत्मा की शक्तियां या आत्मा की उतार चढ़ाव, उन सब बातों का ज्ञान विवेकानंद ने नहीं दिया है। लेकिन बाबा ने तो ज्ञान की बहुत गहराई दी है, और बाबा ने जो ज्ञान की गहराई दी है उसके आधार पे आत्मा को अनुभव करना बड़ा सरल हो गया है। इसलिए एक होता है आत्मा को जानना और एक होता है आत्मा हो जाना, दोनों में अंतर है। जानने का मतलब है कि मैं जानता हूं आत्मा है, शरीर के भीतर एक आत्मा नाम की शक्ति है, मुझे ज्ञान है। लेकिन एक होता है कि मैं आत्मा हो गया, शरीर रहा ही नहीं। तो जो हमारा ज्ञान है वो जानने का ज्ञान नहीं है, हमारा ज्ञान हो जाने का ज्ञान है। जब हम आत्मा हो गए तो उसका फायदा क्या होगा? अब जैसे कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी है, तो इसका मतलब मैं अमर हूं, मेरी मृत्यु कभी नहीं होगी, तो फिर शरीर से मरने का भय क्यों लगता है? और जब मैं आत्मा हो गई इसका मतलब मैं अजर हूं, अर्थात मैं बूढ़ी नहीं होंगी, तो मुझे बुढ़ापे का भय क्यों लगता है? एक आदमी सीढ़ी चढ़ता है, उसके घुटने में दर्द होता है, तो वो याद करता है कि एक समय था जब मैं दो दो सीढ़ी चढ़ लेता था, और आज एक सीढ़ी पे पांव रखते भी मुझे दर्द हो रहा है। ये याददाश्त किस में है? ये याद कौन कर रहा है? घुटना याद कर रहा है क्या? घुटने में तो याद करने की ताकत ही नहीं है। इस बात को आत्मा याद कर रही है कि एक वो घुटना भी था जो दो सीढ़ी चढ़ता था, वो कहां गया? कहां गया? और एक ये घुटना है, एक सीढ़ी भी चढ़ने में तकलीफ हो रही है। इसका मतलब उस घुटने की मालिक भी यही आत्मा थी, इस घुटने की मालिक भी यही आत्मा, आत्मा नहीं बदली। कौन बदल गया देखते देखते? शरीर को तो बदलना ही। जब वो दर्पण में चेहरा देखता है तो सोचता है एक वो चेहरा भी था जो कितना प्लेन था, और आज इस चेहरे पे कितनी झुर्रियां पड़ गई है। तो ये बात किसको याद है? चेहरे को याद थोड़ी है, ये भी तो आत्मा को याद है ना। चेहरा बदल गया, चेहरे पे रिंकल्स आ गई, चेहरे पे बुढ़ापे का असर आ गया, लेकिन आत्मा बूढ़ी हुई क्या? तो जो आत्मा हो गया उसको ये तकलीफ ही नहीं होगी कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, कि मेरे बाल सफेद हो रही हैं, कि मेरी कमर झुक रही है। उसको पता है, पता नहीं कितने शरीरों की कमर झुकी, कितने शरीर गए, और ये भी उसी लाइन में लगा हुआ है, ये भी जाने वाला है, इसको जानना ही है। इसलिए कहते हैं शरीर मरण धर्मा है। मरण धर्मा का अर्थ क्या है? मरना इसका धर्म है, ये अपना धर्म निभाएगा। जन्मते ही वो धर्म इसका निभाना चालू हो जाता है। हम कहते हैं बच्चे की आयु बढ़ रही है और वो धीरे धीरे मृत्यु की ओर जा रहा है। तो मैं आत्मा हो गई, अब मैं आत्मा हो गई तो मुझे ये भी पक्का है कि मैं यहाँ कुछ दिन की मेहमान हूं और ये ड्रेस पहन के एक्टिंग कर रही। अब जैसे रामलीला में किसी व्यक्ति को हम राम बना देते हैं और वो जब मंच पे आता है तो उसको सोने का सिंहासन मिलता है, सोने की ड्रेस मिलती है, सोने का मुकुट मिलता है। दो घंटे उसने राम का रोल प्ले किया और उसके बाद निर्देशक कहता है ये यहीं उतार दे और तुम अपनी वही वाली शर्ट पहन के चले जाओ, तो उसको बड़ा दुख होता है और वो भगवान के मंदिर में जाता है, प्रार्थना करता है कि भगवान ऐसा कुछ करिए ड्रेस मेरे पास ही रहे। फिर वो किसी पॉलिटिशियन के पास जाता है कि मेरी सिफारिश लगा दे ताकि ये निर्देशक मेरी ड्रेस को ना छीने। हो सकता है जो सत्य है वो क्या है कि ये चीजें उसकी ना थी ना है और ना हो सकती हैं। फिर उसकी रात की नींद चली गई, सारी रात करवटें बदलता है, नींद उड़ गई, भूख लगनी बंद हो गई, बीपी हाई हो गया, तनाव चिंता किस बात की कि मेरी ये ड्रेस छिन रही है। कितनी भी चिंता कर ले, कितनी रात जाग ले, लेकिन जो उसका है ही नहीं वो उसका हो सकता है। तो दुनिया में बहुत लोग मंदिर में जाते हैं, भगवान जी ये जमीन ये मकान ये दुकान, और ड्रामा के रोल में केवल रोल था, राम की ड्रेस की तरह ये केवल रोल की चीजें हैं, ये तेरी हो ही नहीं सकती, तो कितने भी मंदिर के चक्कर लगा ले। फिर वो किसी व्यक्ति के आगे सिफारिश की बात लेके जाता है कि मुझे ये मकान दिलवा दे, जमीन दिलवा दे, नौकरी दिलवा दे। अरे ये रोल है, इस रोल में सिफारिश नहीं चलती। फिर उसकी नींद फिट जाती है, कितनी भी नींद फिटा ले, जो उसकी है नहीं वो उसकी होनी नहीं है। और अगर वो एक काम कर ले आराम से अपनी ड्रेस वहीं छोड़ के और वो जो फटी शर्ट पहन के आया था उसको पहन के चुपचाप चला जाए, झोपड़ी में जाते ही गहरी नींद आएगी। ना मंदिर जाने की जरूरत, ना सिफारिश की जरूरत, और ना डॉक्टरों के चक्कर लगाने की जरूरत। तो वास्तव में ये जितनी भी बीमारियां हैं, जितनी भी अंदर के दुख और तकलीफें हैं, ये इसीलिए हैं कि हमने रोल के लिए जो निमित्त मात्र चीजें मिली थी उनमें मेरापन जोड़ दिया, और वो मेरी कभी होनी ही नहीं है, लेकिन मैंने सारा जोर लगा रखा है कि ये किसी तरह भी मेरी हो जाए। तो जो आत्मा हो गया वो किसी चीज में मेरा नहीं रखेगा, मेरापन नहीं रखेगा। उसको पता है ये शरीर भी मेरा नहीं है, ये भी जाना है। पहले से वो सांप की केंचुली की तरह छोड़ने को तैयार बैठा है, बाकी किसी चीज में मेरापन है ही नहीं। तो जो आत्मा हो गया उसे मृत्यु का भय नहीं, बुढ़ापे का भय नहीं, किसी चीज के छिनने और छूटने का भय नहीं, और किसी मित्र संबंधी के चले जाने का भय नहीं। अब कोई राम का रोल प्ले कर रहा है और बाजू में किसी सीता को बिठाया, अगले दिन सीता बीमार पड़ गई, नहीं आई, तो राम को क्या चिंता है? राम को अपने डायलॉग याद है, राम को अपना रोल याद है, वो अपना रोल प्ले करेगा। सीता किसको बनाना है ये किसकी चिंता है? निर्देशक की चिंता, उसकी चिंता थोड़ी है। लेकिन राम अपने डायलॉग बोलना भूल गया और इस चिंता में लगा हुआ है कि सीता कहाँ गई, सीता कहाँ गई। लेकिन सीता को तो जाना ही था। ये निर्देशक की चिंता है कि वो किसको बिठाए, मिट्टी की बिठाए, सोने की बिठाए, लोहे की बिठाए, किसी और को पकड़ के बिठाए। राम को चिंता क्यों? तो जिसको ये पक्की स्मृति है कि मैं एक्टर हूं और मैं आत्मा हूं और ये रोल कुछ समय का है, उसको किसी की चिंता नहीं है। आने वाला आए, जाने वाला जाए, उसको अपने रोल को बेस्ट बनाने की चिंता है। तो देखिए, आत्मा हुए कि नहीं हुए, कि सिर्फ आत्मा का ज्ञान लिए घूमते हैं, सबको बताते हैं तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, हम भी आत्मा है, भ्रकुटी में निवास करते हैं, ज्योति बिंदु है। ये केवल उसकी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन से जीवन नहीं बदलता। एक्सप्लेनेशन तो कोई घंटों भी कर सकता है, जीवन कब बदलता है? जब वो चीज मेरे जीवन में उतर जाती है। तो हमारा पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, और ज्ञान का पहला पाठ है मैं आत्मा हो गया। जब ये ज्ञान आ गया तो सारे आकर्षण खत्म हो गए, दे के संबंध, दे के पदार्थ, समझ में आ गया ये निमित्त मात्र हैं। और उसके बाद मैं आत्मा जैसे आई थी, मुझ आत्मा का अगला रोल रेडी है। आत्मा तो एक है, लेकिन उसकी ड्रेस कितनी है? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को उसके 84 जन्म दिखाए थे। सतयुग का शरीर, ये सतयुग के 8 शरीर, फिर त्रेता के 12 शरीर, फिर द्वापर के 21 शरीर और कलयुग के 42। वो एक एक करके जब बाबा ने शुरू शुरू में ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार कराया तो वो सब दिखाए। बाबा ने हमको भी दिखा दिए, ज्ञान से तो हमने भी देख लिए ना, सतयुग में हमारे 8 शरीर कैसे होंगे, त्रेता वाले। तो मैं एक मालिक और मेरी ड्रेस कितनी? 84। तो 84 ड्रेस जब होती है तो मालिक को किसी एक ड्रेस से अटैचमेंट होता है? उसको तो बारी बारी सभी पहननी है। तो मुझ आत्मा ने बारी बारी सबको पहना, और अब इसकी बारी आई, और जैसे वो मैंने छोड़ दी, ऐसे ही मुझे इसको भी छोड़ना है। फिर रिपीट होगा, फिर पहली वाली ड्रेस पहननी। इसलिए ये खेल है, जैसे बच्चे पूरा राउंड लगाते हैं और उसके बाद फिर स्टार्टिंग करते हैं, 1 2 3 4 पूरा राउंड लगाया। तो ऐसे ही मैंने 84 ड्रेस पहनी और फिर पहले वाली ड्रेस मेरी रेडी। तो जब मुझे ये ज्ञान आ गया तो देह से भी डिटैच, देह के संबंध से भी डिटैच, देह के पदार्थों से भी मैं डिटैच। यही तो हमारा ज्ञान है, यही तो सार है, यही वास्तव में पहले सब्जेक्ट की सिद्धि है। सिद्धि का अर्थ है कि मैं जो बोलूं, जो सोचूं, वो ज्ञान युक्त है, वो धारणा युक्त है। और जब हम इस स्टेज में टिकते हैं तो निरंतर मौज है, निरंतर आनंद है, निरंतर खुशी है। मैं आत्मा स्वयं में ही खुश हूं, मुझे बाहर की कोई चीज खुश नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा मेटाफिजिकल है और बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो फिजिकल है। तो कोई भी फिजिकल चीज मेटाफिजिकल को कैसे खुश करेगी? आत्मा एक शक्ति शक्ति है, एक ऊर्जा है, एक अनविजिबल पावर, उसको अगर खुश कर सकते हैं तो केवल खुशी के विचार खुश कर सकते हैं, बाकी कोई चीज उसे खुश नहीं कर सकती। और खुशी के विचार कब आते हैं? जब मैं आत्मा हो जाती हूं। मान लीजिए इस शरीर में कोई बीमार है, वो बीमार नहीं है, बीमारी का रोल उसको ड्रामा में प्ले करना है। आत्मा तो स्वस्थ है, आत्मा बीमार है क्या? लेकिन बीमारी का रोल है। इतने बड़े ड्रामा में किसी को कोई रोल मिलेगा, किसी को कोई रोल मिलेगा, वैरायटी रोल है। सतयुग में ड्रामा की शुरुआत होती है तो थोड़े रोल है, बीमारी का रोल नहीं, गरीबी का रोल नहीं, बुढ़ापे का रोल नहीं। जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ेगा, एक्टर बढ़ेंगे तो उन्हें कोई ना कोई रोल दिया जाएगा। तो अब कलयुग में कितने रोल हैं, किसी को बीमारी का, किसी को मुकदमे का, किसी को गरीबी का, किसी को और कई तरह के रोल। तो अगर मैं आत्मा हो गई तो मैं बीमार थोड़ी हूं, मैं बीमारी का रोल प्ले कर रही हूं। और अगर मैंने बीमारी का रोल इतनी शिद्दत के साथ प्ले किया, देखने वाले कहते हैं अरे वाह, इतनी बड़ी बीमारी और फिर भी मुस्कुराना, फिर भी निश्चिंतता, तो निर्देशक कहेगा ये तो रोल प्ले करने में बड़ी एक्सपर्ट है, अगली बारी से बहुत बढ़िया रोल दिया जाए। तो मुझे जो भी रोल मिला उसको मैं इतना शिद्दत के साथ प्ले करूं कि मेरा निर्देशक खुश हो जाए। वो बेशक बीमारी का रोल, गरीब हूं मैं गरीब नहीं हूं, गरीबी का रोल है। अगर मैं गरीब हूं तो मैं आत्मा सतयुग में भी गरीब होती, त्रेता में भी गरीब होती, द्वापर में भी गरीब होती। वहां गरीबी है क्या? वहां मेरा रोल बदल जाएगा, वहां अमीरी का रोल है। कलयुग के अंतिम जन्म में मुझे गरीबी का रोल प्ले करना है, लेकिन मैं आत्मा गरीब नहीं हूं, मेरे पास सर्व शक्तियां हैं, संपूर्ण ज्ञान है, सारे गुण हैं, सारे खजाने हैं बाबा के दिए हुए, मैं बालक सो मालिक हूं, भगवान की संपूर्ण प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हूं, तो मैं गरीब कहां हूं? लेकिन ये शरीर, इस ड्रेस में मैं गरीबी का रोल प्ले कर रही हूं। तो पहला है मैं आत्मा हूं, और दूसरा है मेरा पिता परमात्मा है। ये हमारा ज्ञान के सब्जेक्ट में दूसरा पाठ है। एक राजा, वो अपने एक छोटे बच्चे को घोड़े पर पीछे बिठा करके जंगल में शिकार खेलने जाता है, और वो बच्चा घोड़े से नीचे गिर जाता है, राजा को दिखाई नहीं देता। जब लौटने लगता है और पीछे देखता है तो बच्चा है ही नहीं, बहुत ढूंढता है, बच्चा नहीं मिलता है। अब वो बच्चा जंगल में जो जानवर है उन जानवरों के साथ मिक्स हो जाता है, और पेड़ों से गिरे हुए कव्वे के खाए हुए, तोते के खाए हुए झूठे बेर खाता है, अमरूद खाता है, और उसी तालाब में पानी पीता है जिसमें वो जानवर पानी पी रही। वो राजा महल में आता और महल में उसका एक दूसरा बेटा भी, वो बेटा सोने के महल में सोने की खटिया पे सोता है, सुबह उठता है और 36 प्रकार के व्यंजन से वो नाश्ता करता है। दोनों ही राजा के बच्चे हैं, लेकिन एक झूठे बेर खा रहा है, तालाब का गंदा पानी पी रहा है, और दूसरा 36 प्रकार के व्यंजन का आनंद ले रहा है। दोनों में इतना अंतर क्यों है? क्यों अंतर है? क्योंकि वो बाप से डिसकनेक्ट हो गया, बाप से संबंध विच्छेद हो गया, बाप की पहचान खो गई। तो जिनकी पहचान खो जाएगी, वो अनाथ जैसा, परित्यक्त जैसा, बेदखल जैसा जीवन जिएगा, सब कुछ होते हुए भी। और जिसके पास पहचान है वो कैसा जीवन जिएगा? जैसा आज मुरली में बाबा ने चर्चा की, मैं बेफिक्र बादशाहों की सभा देख रहा हूँ, किसी बाप के इतने बादशाह बच्चे हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता है। छोटा बच्चा भी कहेगा मैं लक्ष्मी नारायण बनूंगा। सब इंद्रियों के मालिक हैं, सब बादशाह हैं, तो वो बादशाह का जीवन जिएगा। तो अगर मुझे जीवन में कोई दुख है, अशांति है, अभाव है, कमी है, कमजोरी है, उसका कारण क्या है? बाबा ने कहा एक ही दिन में बच्चे अभी अभी सनाथ बन जाते हैं और अभी अभी अनाथ बन जाते हैं। अभी अभी बाप से डिस्कनेक्ट होकर के उस बच्चे जैसे बन जाते हैं जिसके पास कुछ नहीं, और अभी अभी कनेक्शन जोड़ के उस राजकुमार जैसे बन जाते हैं। एक ही दिन में बच्चे दोनों खेल खेलते रहते। तो बाबा कहते हैं इस सब्जेक्ट में, इस पाठ में सिद्धि का अर्थ क्या है? मैं निरंतर बाबा से जुड़ करके रहूं और निरंतर बाबा के खजानों की अनुभूति करता रहूं, ये सिद्धि है। परमात्मा के पाठ की ये सिद्धि है। मैंने परमात्मा को जान लिया, उसको अपना लिया, उसको अपना बना लिया, उससे कनेक्शन जोड़ लिया, उसको पहचान लिया, तो अब मैं निरंतर उसके साथ जुड़ा रहूं। और जो निरंतर कनेक्शन में है उसको दुख की छाया भी छू नहीं सकती, अभाव नहीं आ सकती, अप्राप्ति नहीं आ सकती, कष्ट नहीं आ सकते, कर्म भोग नहीं आ सकते। वो सदा मालामाल है, विजयी है, भरपूर है, सशक्त है, समर्थ है, सफल है, उसका निरंतर कल्याण। और तीसरा सब्जेक्ट, तीसरा पाठ है पहले सब्जेक्ट का, समय। खुद को जानो, खुदा को जानो और समय को पहचानो। तो आज बाबा ने मुरली में समय की भी पहचान दी। ये समय बड़ा भाग्यशाली है, बड़ा अमूल्य समय है, और इस समय की एक एक घड़ी बड़ी अमूल्य है। समय अमूल्य है, लेकिन मेरा जीवन कितना है? कल सुबह हो या ना हो कोई गारंटी है? गुरु नानक देव जी ने अपने शिष्यों से पूछा मृत्यु कितनी दूर है, तो एक ने उत्तर दिया कि अभी तो मैं 40 साल का हूं, कम से कम 40 साल तो रहूंगा। गुरु नानक देव जी ने दूसरे से पूछा, उसने कहा गुरु जी कल सुबह हो या ना हो कोई गारंटी नहीं। और फिर तीसरे से पूछा तो उसने कहा कि ये सांस तो आ गई, लेकिन अगली सांस पता नहीं आए या ना आए। तो मृत्यु केवल एक श्वास की दूरी पर। तब गुरु नानक देव जी ने कहा इसका उत्तर ठीक। मम्मा ने हमें क्या सिखाया? हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझो। तो समय की सिद्धि का अर्थ क्या है? कल करना सो आज करे, आज करना सो अब। कब शब्द ब्राह्मणों के डिक्शनरी में है ही नहीं। जो करना है वो अब करना है। कल नाम काल का है। महाभारत में प्रसंग आता है कि एक कोई मांगने वाला आया तो युधिष्ठिर ने कहा कि कल ले जाना, आज मैं बहुत व्यस्त हूं राजकार्य में। तो इतनी देर में उसने देखा कि बहुत जोर जोर से नगाड़े बजने लगे। तो उसके मन में आया ये नगाड़े मैंने तो आदेश नहीं दिया, कौन बजवा रहा है? तो उसने भीम को बुलाया कि ये नगाड़े क्यों बज रही? भीम ने कहा ये बहुत खुशी में नगाड़े बज रही हैं, आज एक खुशी की घटना घटी है। तो युधिष्ठिर ने पूछा क्या घटना घटी है? बोला हमारे महाराज युधिष्ठिर कालजयी बन गए हैं, त्रिकालज्ञ बन गए हैं। उनको मालूम है कि मैं कल तक रहने वाला हूं। काल पर जीत पा ली है उन्होंने, वो कालज्ञ बन गए हैं। कल को उन्होंने आज ही जान लिया, इस खुशी में मैं नगाड़े बजवा रहा हूं। तो युधिष्ठिर नहीं समझा, तो भीम ने कहा अभी अभी आपने एक याचक को कहा कि कल लेने आ जाना, इसका मतलब आपको कल का ज्ञान है कि आप रहेंगे और कल परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी और कल ये काम हो जाएगा, तो आप तो काल के ज्ञाता हो गए, इसलिए मैं ये नगाड़े बजवा रहा हूं। तो युधिष्ठिर को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने याचक को बुलवाया और जो उसको चाहना थी उसको पूरा किया। तो जो लोग कल के ऊपर काम को छोड़ते हैं, इसका मतलब वो कल के ज्ञाता हैं कि भाई कल हो जाएगा। बाबा ने साकार में एक मंत्र पक्का किया, तुरंत दान महापुण्य, मुरली में भी बाबा सिखाते। जब बाबा को अपने मकान बेचने थे, जब बाबा समर्पित हुए तो बाबा ने भाव को भेजा था कि जाकर के देखो प्रॉपर्टी बाजार में बिक रही है, लोग लेने वाले मिलते हैं क्या। तो भाव वापस लौटा, बाबा ने पूछा तो उसने कहा बाबा बिक तो रही है पर किसी ने मुझे राय दी कि 15 दिन के बाद बेचेंगे ना तो कीमत 1.5 गुनी मिलेगी। तब बाबा ने कहा था बच्चे 15 दिन के बाद विनाश हो गया, तो तब शुरू में जब ओम मंडली अभी स्थापित हुई थी, शुरुआत हो रही थी, तो बाबा को तब से ये पाठ पक्का था कि कल नाम काल का है और कल का भरोसा नहीं है, कल आए या ना आए निश्चित नहीं है, जो करना है वो अभी करना है। इसको कहते हैं समय का ज्ञान, समय की पहचान। तो ये है हमारा पहला सब्जेक्ट ज्ञान का और दूसरा सब्जेक्ट है योग का। तो योग में सिद्धि का अर्थ क्या है? योग में सिद्धि का अर्थ है कि मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, जितनी देर चाहूं, जिस स्थिति में टिकना चाहूं टिक जाऊं, ये है योग की सिद्धि। इसको कहते हैं मन के ऊपर मास्टरी। मैं अपने मन को बीज रूप स्थिति में टिकाना चाहूं तो ये टिक जाए, फरिश्ता स्थिति में टिकाना चाहूं तो ये टिक जाए, ब्राह्मण चोटी स्वरूप में टिकाना चाहूं तो ये टिक जाए, शरीरी स्थिति में टिकाना चाहूं तो ये टिक जाए। माने मैं अपने मन को जैसा आदेश दूं वो उसको फॉलो करे, ये है योग की सिद्धि। अगर मैं मन को एक बात कहूं और ये जाए दूसरी दिशा में तो मन ही वश में नहीं है, और जब मन वश में नहीं है तो इंद्रियां वश में कैसे होंगी, और फिर इंद्रियों के द्वारा होने वाला कर्म वश में कैसे होगा। जब बीज ही ठीक नहीं है तो डाली पत्ते वो सब ठीक कैसे होंगे। किसी भी कर्म का आधार तो मन है, बीज है मन। तो मेरा मन, बाबा ने थोड़े दिन पहले कहा था कि दिनचर्या के साथ साथ मनचर्या की भी सेटिंग करो। मुझे अपने मन को सारा दिन में कैसे चलाना है, किस स्वमान में किस वक्त टिकाना है, किस अनुभूति में किस वक्त टिकाना है, किस सेवा में किस समय लगाना है। दिनचर्या को सेट करना बहुत सरल है क्योंकि दिनचर्या माना दिन के स्थूल काम, लेकिन उसके साथ मन की चर्या बनाना, मन को एकाग्र रखना, मन को दिशा देना। होता क्या है कि जब कोई भी घटना घट जाती है तो कई बार मन उस घटना से डिटैच नहीं हो पाता, उस व्यक्ति से डिटैच नहीं हो पाता। एक जंगल में एक बहुत बड़ा घास का मैदान है और वहां एक हिरन घास चर रहा है बहुत मस्ती से, बहुत निश्चिंतता से। अब इतनी देर में उसको शेर की दहाड़ सुनाई देती है। हिरन देखता है कि एक शेर मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है, तो हिरन भागता है और भागता भागता जाकर के एक बहुत बड़े झुरमुट में छिप जाता है, बड़ी बड़ी झाड़ियां हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, ऐसा गहरा झुरमुट है उसमें छिप जाता और शेर को दिखाई नहीं देता है। शेर थोड़ी देर तो इंतजार करता है कि ये निकलेगा निकलेगा, नहीं निकला तो शेर ने अपनी दिशा बदल दी, वो चला गया। हिरन बहुत तेज दौड़ा था तो थोड़ी देर में वो संयत हो गया, शेर चला गया और हिरन झुरमुट से बाहर निकला और बाहर निकल करके फिर वही उसी घास के मैदान में उसी निश्चिंतता के साथ उसने घास चरना चालू कर दिया। अब आप कंपेयर कीजिए हिरन के साथ एक मनुष्य की मनस्थिति की। मान लीजिए एक मनुष्य उस घास के मैदान में खड़ा था, शेर आया, मनुष्य भागा, मनुष्य छिपा, शेर वापस लौट गया, लेकिन अब वो मनुष्य वापस उसी घास के मैदान में जाएगा? है हिम्मत? तो ज्यादा ताकतवर कौन हुआ? क्योंकि वो पास्ट को याद नहीं रखता। और मनुष्य क्या करेगा, कईयों को व्हाट्सएप भेजेगा, अरे पता है आज क्या हुआ। और अगर कोई उसकी बात को ध्यान से नहीं सुनेगा तो वो सोचेगा मेरी बात का प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा, इसको मैं किसी न किसी तरह से प्रभावित करूं, ये भी मेरी तरह से डरे एक बार, इसका भी कलेजा धड़के। तो वो बात इस तरीके से सुनाएगा कि सामने वाले में अपना भय ट्रांसफर करेगा, ताकि सामने वाला भी कभी हिम्मत ना करे उस मैदान में खड़ा होने की, और फिर उसको फुलस्टॉप नहीं लगाएगा। अगले दिन और फिर महीने बाद भी कभी शेर की चर्चा होगी तो फिर कहेगा पता है महीने पहले मेरे साथ क्या हुआ था। तो मन कहाँ गया, मन की ऊर्जा कहाँ लग रही है, मन के भीतर कौन सा फोल्डर जमा हो गया। जैसे हमारा कंप्यूटर है, मान लो उसकी कैपेसिटी 100 GB की है, उसमें हमने 10 GB का एक फोल्डर रखा तो 90 GB कैपेसिटी रह गई, हमने वो शेयर वाली घटना का फोल्डर बना के रख लिया, 10 GB तो गया उसमें, 90 GB बाकी। और ऐसी पता नहीं कितनी घटनाएं फोल्डर बना बना के हम रख लेते हैं, हमारे रोज के काम के लिए तो 1 GB बचता है, 1 GB में क्या क्या याद रहेगा, इसलिए हम चीजें रख रख के भूलते हैं। करते कुछ है, हो कुछ जाता है, बोलते कुछ है, मुख से निकल कुछ जाता है, फिर हम कहते हैं ज्ञान की बातें याद नहीं रहती। तो कारण क्या है कि घटना घटने के बाद हम उसको फुल स्टॉप नहीं लगाते, और जिस चीज में ऊर्जा नहीं लगानी, मन की ऊर्जा उसमें बहती रहती है, बहती रहती है, बहती रहती है। इसलिए स्मृति विभ्रम, इसलिए बातों को बार बार रिपीट करना, संकल्पों को रिपीट करना, उसी बात में बार बार किसी को टोकना, ये सब क्यों होता है? सामने वाले को जो बात पसंद नहीं है हम बार बार वही करते, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारे मन में ऊर्जा है ही नहीं, मन को दिशा देने के लिए मन में ताकत ही नहीं है। मन के संकल्पों को खुशहाल बनाने की, दूसरों के लिए अनुकूल बनाने की शक्ति मन में रही ही नहीं। जैसे किसी व्यक्ति के हाथ में शक्ति नहीं होती है तो ना चाहते भी वो कांपता है ना, सामने वाला कहेगा अरे इसके हाथ को क्या हो गया, अरे तुम हाथ को स्थिर रखो ना, वो कहेगा जी ऐसा कुछ हुआ है, मेरा हाथ कांपता है, बस ये रहता ही नहीं। तो मन इतना कमजोर हो गया है कि वो चीज अनुकूल हो या ना हो लेकिन उसको बार बार करता रहता है, कमजोर हो गया। ये कमजोरी क्यों आई? क्योंकि पास्ट में ऊर्जा लगाई, बीती हुई बातों का चिंतन किया। तो मैं बीती बात को फुल स्टॉप लगाऊं, इसलिए बाबा ने फुल स्टॉप पे बहुत मुरली चलाई है। फुल स्टॉप लगाना क्यों जरूरी है? हम मनुष्य इस संसार में रहते हैं, एक दो के व्यवहार में आते हैं, आपसी व्यवहार को मधुर बनाने के लिए भी फुल स्टॉप लगाने की बहुत आवश्यकता है। अब मान लीजिए हम एक ऑफिसर हैं और कोई व्यक्ति आया हमसे बात करने, लेकिन वो थोड़ा अग्रेसिव था, थोड़ा नेगेटिव था, थोड़ा सामने बोल रहा था, शिकायत कर रहा था, हमारी कमी निकाल रहा था और बार बार एक ही बात को रिपीट करके उसने हमको काफी इरिटेट किया। मान लीजिए आधे घंटे तक बहुत बहस करके, बहुत अवगुण वर्णन करके वो चला गया मान लीजिए, और उसके बाद हमें तुरंत फोन आता है कि मैं आ रहा हूं आपसे मिलने, तो हम क्या कहेंगे, सोचेंगे कि अभी अभी ये तो इतना समय खराब कर गया, माता खराब कर गया, अब इसको मना कर देते, तो हम कहेंगे हमारे पास समय नहीं, हम बहुत बिजी। ऐसा हमने क्यों बोला? क्योंकि पिछले व्यक्ति का प्रभाव है, अभी भी उसकी कई हुई बातें मन में घूम रही हैं। लेकिन जो व्यक्ति आने वाला था, वो हमें कोई शुभ समाचार देने वाला था, हमारे लिए कोई अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा था, कोई गिफ्ट लेके आ रहा था, हमारी किसी सफलता की बात हमें सुनाने आ रहा था, तो हमने क्या किया, हमने पिछले वाले ने जो कहा उन बातों के प्रभाव में अपने मन को दबा दिया, वो बातें हम पे हावी और अगली अपॉर्चुनिटी हमारे हाथों से निकल गई, तो नुकसान किसका हो, हमने अपॉर्चुनिटी को खो दिया। इसलिए घटना बीती और फुल स्टॉप अगर लग जाए तो अगली घटना का हम फायदा ले पाएंगे, और बीती हुई घटना में ही मन उलझा रहा। आप रास्ते चल रहे हो और एक कांटे वाली झाड़ी ने आपका कपड़ा पकड़ लिया, कांटे में कपड़ा उलझ गया, आपका कितना समय गया, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, घंटा भी जा सकता, आपके साथ ही आगे निकल गए। तो ये बीती हुई बातें भी कांटे वाली झाड़ी की तरह से, उसमें मन फंस गया, उलझ गया, आप उसी में उलझे रहे, बाकी लोग आगे निकल गए, बाकी लोगों ने पुरुषार्थ कर लिया, अच्छी अच्छी अनुभूति कर ली, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें याद कर ली, अच्छी अच्छी सेवाएं कर ली, और आप अभी उसी झाड़ी में उलझे हुए हो, निकल ही नहीं पा रहे। इसलिए बाबा ने कहा फुल स्टॉप लगाओ, बात गई और फुल स्टॉप लगाओ। बहती हुई नदी से सीखो, नदी में पानी हमेशा होता है लेकिन वही वाला पानी नहीं होता, एवरी सेकंड नया पानी आता है। मन में संकल्प हमेशा होते हैं, कोई घड़ी ऐसी नहीं होती जब मन में संकल्प ना हो, लेकिन एवरी मोमेंट न्यू थॉट होना चाहिए। अगर वही बासी थॉट मन में घूम रहा है, नदी में वही बासी पानी पड़ा है, तो क्या होगा, वो नदी नहीं रहती, फिर वो टुबका बन जाता है, बासी पानी, काई वाला पानी, मच्छर वाला पानी, गंदला पानी। तो मन में वही वही संकल्प पड़े हुए हैं, वही वही बात, तो ये कैसा जल हो गया, संकल्प रूपी जल, गंदला जल, काई वाला जल, सड़ा हुआ जल, इसको बहाओ, उन विचारों को बहा करके नए विचार लाओ, और निरंतर ये बहाव चलता रहे। एक सेकंड पहले जो थॉट था, अगले सेकंड एक नया थॉट, जिसको बाबा ने कहा था हर घड़ी चढ़ती कला। चढ़ती कला का अर्थ क्या, हर घड़ी उमंग, हर घड़ी उत्साह, हर घड़ी नया चिंतन। जैसे ट्रेन चलती है तो मजा आता है, क्यों मजा आता है, क्योंकि जब आप खिड़की से देखते हैं तो नए नए दृश्य दिखाई देते, अभी एक गांव गया, अभी एक बगीचा गया, अभी एक फैक्ट्री गई, और अगर गाड़ी स्टेशन पे खड़ी रहे तो कैसा लगता है, ये चलती क्यों नहीं है, क्योंकि खिड़की से वही देख रहे हो, कुछ भी नया नहीं। तो ठहरती कला माना वही वही बातें, वही वही चिंतन, वही वही विचार, तो व्यक्ति बोरियत महसूस करता है, बासीपन महसूस करता है, उमंग की कमी महसूस करता है। और चढ़ती कला, दौड़ती कला, उड़ती कला माना हर घड़ी नया दृश्य। तो ये तब हो पाएगा जब हम बीती को बिल्कुल नहीं देखेंगे। बाबा ने कहा था अगर बीती बातें याद करने का इतना ही शौक है ना, तो अपने उस आदि और अनादि काल को याद करो। अनादि काल में मैं आत्मा बाप समान बाप के पास बैठी थी। बाबा ने कहा जैसे आसमान में कई सितारे बहुत ज्यादा चमकते हैं, तो तुम बच्चे भी परम धाम में बाकी धर्मों की आत्माओं की भेंट में बहुत ज्यादा चमकते हो, और जैसे कई सितारे चंद्रमा के बिल्कुल नजदीक होते हैं, तो आप भी परम धाम में बाबा के बिल्कुल नजदीक बैठते हो, आपका सेक्शन बाबा के बिल्कुल नजदीक है। तो अपने अनादिकाल को याद करो, वो मेरा पास्ट है, और उसके बाद मैं आत्मा गोल्डन एज में आई, वो मेरा पास्ट भी बहुत सुंदर है, मैं उसको याद करूं, और उसके बाद मैं आत्मा द्वापर युग में पूज्य बनी, उसको भी याद करूं, अगर पास्ट को याद करने का बहुत ही शौक है तो उस वाले पास्ट को याद करो जो फिर अभी सामने आने वाला है, जिसके लिए बाबा ने हमें छूट दी, जिसके लिए बाबा ने हमें श्रीमत दी। कई बार ऐसा भी होता है कि मान लीजिए हम कहीं गए, किसी पार्टी में गए, किसी के घर गए, किसी रिश्तेदारी में गए, कहीं सफर में गए, अपने ऑफिस में गए। व्यक्ति घर से बाहर अनेक स्थानों पे जाता है, जाना ही, और वहां हमें हमने जैसा सोचा था वैसा व्यवहार नहीं मिला। हमने सोचा था कि वहां हमारा बहुत मान होगा, मान नहीं हुआ। हमने सोचा था कि वहां हमें ऊंची जगह मंच मिलेगी बैठने की, वो भी नहीं मिला। हमने सोचा था कि वहां भोजन बहुत बढ़िया होगा, वो भी नहीं मिला। कुछ भी हम सोच के गए थे, किसी ने हमें बताया था, वो हमें कुछ भी नहीं मिला। मान लिया, ऐसा बहुत बार होता है। हमें बताया गया था कि वहां बहुत स्वच्छता है, स्वच्छता नहीं थी। हमें बताया गया था कि वहां पे बहुत सुविधाएं मिलेंगी, बहुत सेवादार हैं लोग, बहुत सेवा करेंगे, सेवा करने वाला भी कोई नहीं मिला। हमें बताया गया था कि गाड़ी टाइम पे आएगी, गाड़ी भी टाइम पे नहीं आई, हमें बहुत वेट करनी पड़ी। इस तरह की बहुत बातें जीवन में होती। तो जैसे ही हम गए, हमें कुछ भी अनुकूल नहीं मिला। जब अनुकूल नहीं मिलता है तो मन क्या करता है अंदर ही अंदर, क्यों, क्या, कैसे, इस तरह के विचार मन करने लगता है। वहां की हम अपनी ड्यूटी पूरी करके आ गए और मान लो बहनें बैठी हैं सामने, बैठे तो भाई भी हैं पर बिल्कुल सामने बहनें बैठी हैं। मान लो ये एक बहन के जीवन में एक घटना घटती है, वो उस प्रोग्राम से वापस आ गई और अब उसको शाम का खाना बनाना है, तो वो रास्ते में योजना बनाती है कि मुझे बाजार से भिंडी लेनी है, भिंडी ले लेती है, घर में आती है और ये हाथ जो नौकर है ना, इनको ऑर्डर देती है कि भिंडी काटो। ये नौकर तो कहना मान लेते हैं बेचारे, लेकिन आत्मा के जो एक्चुअली ये चाकर है, आत्मा के जो नौकर है उनमें भी जो प्रधान है वो है मन। अब मन कहाँ है? हाथ तो काट रही है पर मन कहाँ है? मन वहीं पे है जहां वो घटना घटी थी, जहां हमें कुछ अनुकूल नहीं मिला था, जहां उसने क्यों, क्या, कैसे करना चालू कर दिया था। अब ज्ञान में हमें क्या सिखाया गया कि बुद्धि है मां और मन है उसका पुत्र, यही कहा गया ना। अगर बछड़े को नियंत्रित करना हो तो गाय को खूंटे से बांधो, बछड़ा अपने आप मां के पास आएगा। बछड़े को पकड़ने की कोशिश करोगे तो वो नहीं पकड़ा जाएगा। तो बुद्धि है मां और मन है उसका पुत्र। मन को कंट्रोल करने वाली है बुद्धि। आपने दुनिया में कोई ऐसी मां देखी जो किसी फंक्शन में जाए और अपने बच्चे को वहीं छोड़ आए और अकेली घर आ जाए? देखी? देखी? कैसी भी अनपढ़ मां हो, कैसी भी कम बुद्धि वाली मां हो, फिर भी उसको इतनी समझ तो होती है ना कि बच्चे को मैं साथ लेके जाऊं। तो वो क्या करेगी? बच्चे को कहेगी या तो उसका हाथ पकड़ेगी या कहेगी मेरे आगे आगे चल। और अगर वो थोड़ा भी पीछे छूटता है तो मुड़ के देखती है कि नहीं देखती, कहां रह गया, किधर गया, फिर उसका हाथ पकड़ती। लेकिन ये बुद्धि कैसी मां है? बच्चे को वहीं छोड़ आई, वो वहीं चक्कर लगा रहा है और खुद घर में आ गई, और इनको ऑर्डर दे दिया कि भिंडी काटो। ये तो चक्कर है, मान लिया कहना, लेकिन इस बुद्धि का पुत्र मन कहां है? और अगर वो वहां छूट गया तो ये पूरी तरह यहां कैसे आएगी? किसी का बच्चा पीछे छूट जाए तो मां का घर में मन लगता है क्या? उसकी भी ऊर्जा जाएगी। तो हाथ तो भिंडी काट रहे हैं लेकिन बुद्धि भी उसके पीछे चक्कर लगा रही है, लेकिन वो उसका कहना नहीं मान रहा है या ऐसे भुला नहीं रही है। तो बटा हुआ है, तन यहां है, मन वहां है। भिंडी तो काटनी है, बनानी है, लेकिन उमंग नहीं, खुशी नहीं, आनंद नहीं, मौज नहीं। और अब गैस के पास जाती है छोंक लगाने, तो एकदम चिल्लाती है मसाला दानी कहाँ है। तो जो घर में पहले थे उनमें से कोई दौड़ के आता है, देखो ये सामने ही पड़ी है, ये देखो ना ये पड़ी है, लेकिन मुझे दिख क्यों नहीं रही है? क्योंकि ना मन यहाँ है ना बुद्धि यहाँ है। भिंडी तो नौकरों ने काट दी, वो तो आदत है, कई जन्मों की आंख बंद के भी कट जाती है, लेकिन मन कहाँ है, बुद्धि कहाँ है? इसलिए सामने पड़ी चीज भी नहीं दिख रही। तो क्या मेरा मन मेरे वश में हुआ? एक छोटी सी घटना ने मेरा मन मेरे से छीन लिया। घटना में इतनी ताकत है और मैं उसके सामने इतनी मजबूर हूं, इतनी कमजोर हूं। इसका मतलब तो मेरे मन को मेरे से कोई भी छीन सकता है। और ये सारा दिन मेरे से छीना जाता है। कभी कोई बात आ गई, कोई घटना आ गई, कोई व्यक्ति आ गया, कोई प्रकृति का प्रकोप आ गया, कोई परिस्थिति आ गई। मैं अपने मन को ही नहीं संभाल सकती तो अपने राज्य को क्या संभालूंगी, या किसी और को कैसे कहूंगी कि तुम अपना मन संभालो, मुझे तो आज तक आया नहीं। तो होना क्या चाहिए कि जैसे ही प्रतिकूल माहौल मिला, मुझे सबसे पहले अपने मन को टटोलना है, ये कहां है? परिस्थिति तो बाहर है, लेकिन मुझे तो अंदर से अपनी स्थिति बनानी है। तो मैं उसी समय अपने मन को, जब वो पहली बार क्यों क्या करता है, उसी समय अपने मन को कहूं कि ये भी ड्रामा का एक दृश्य है, इससे भी कुछ सीखना है, हम उससे कई बातें सीख सकते हैं। ये अचानक का पेपर है, बाबा इसके भी नंबर लगाएगा, ये भी मेरे योग की शक्ति को परखने का एक समय है। प्रतिकूल परिस्थिति में मैं अपने मन को कितना स्थिर रख सकती हूँ। आवश्यक नहीं कि सामने वाला व्यक्ति मेरे आकलन के अकॉर्डिंग ही मेरी इज्जत करे, उसका अपना क्राइटेरिया है, वो मुझे कितना मान देता है। आवश्यक नहीं कि उसने जो प्लान किया था उसमें कोई बाधा ना पड़े, हो सकता है इसने बहुत अच्छी प्लानिंग की हो और इसको अचानक कोई बाधा आई, इसकी व्यवस्था बिगड़ गई, तो मुझे इसको सहयोग देना है। मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है कि इसने मुझे बुलाया, इसलिए मैं इसकी कर्तव्य हूं। अगर इसकी व्यवस्था में कुछ ऊपर नीचे है तो मैं सहयोग दूं, मैं उसको और अधिक क्यों क्या करके वाइब्रेशनों से बिगाड़ू नहीं। मुझे ये अपने मन को तुरंत समझाना है, तुरंत फुल स्टॉप लगाना है, तुरंत मन के ऊपर नियंत्रण करना है। और अगर मैं ऐसा करती हूं तो मन भी और बुद्धि भी दोनों ही शरीर के साथ साथ घर में आते हैं। वहां जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं अपने घर को तो ठीक रखूं, मैं भोजन तो शक्तिशाली संकल्पों के साथ बनाऊं, नहीं तो मेरी वो घड़ी भी बिगड़ गई और घर में आने के बाद मेरा बाकी सारी दिनचर्या भी बिगड़ गई। इसलिए मन के ऊपर मास्टरी। और जब छोटी छोटी घटनाओं में मन यूं डोल जाता है, पीछे छूट जाता है, तो भला योग कैसे लगेगा? तो योग की सिद्धि का अर्थ है घड़ी घड़ी मन को चेक करो और जिस स्थिति में टिकाना चाहते हो वहां टिकाओ। और तीसरा सब्जेक्ट है सद्गुणों का सब्जेक्ट, दिव्य गुणों का सब्जेक्ट। उसके लिए भी बाबा ने कहा है कि जैसे एक गुण है शांति, तो बाबा ने कहा है दुनिया में तीन तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जो बिना ही बात अशांत होते, और दूसरे वो लोग हैं जो कहते हैं वैसे तो हम शांत हैं, लेकिन अगर कोई अशांत करेगा तो कम हम भी नहीं रहेंगे, उत्तर तो देंगे ना। और तीसरे वो लोग हैं जो कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए हमको हमारी शांति नहीं छोड़नी। तो हमें तीनों में से कौन सा बनना है? थर्ड। और इसको कहती है मैंने शांति के गुण में सिद्धि प्राप्त कर ली। कुछ भी हो जाए पर मेरी शांति नहीं जा सकती, ये चैलेंज। जब मैं इस तरह से चैलेंज करने लगूं, दुनिया मेरा कुछ भी छीन सकती है, शरीर भी छीन सकती है, लेकिन मेरी शांति को नहीं छीन सकती। जैसे हम दादी जानकी के लिए कहते हैं मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड, तो इनके जब माइंड का एक्सपेरिमेंट किया गया तो कई तरह से इनको हिलाने की, इरिटेट करने की कोशिश की गई, लेकिन ये अपने स्वरूप में इतनी दृढ़ता से टिके रहे कि इरिटेट करने वाले इरिटेट हो गए, लेकिन ये अपने स्वरूप में टिके रहे। तो हम चैलेंज कर सके कि भाई तुम कुछ भी कर लो, कैसा भी हो जाए, लेकिन शांति तो मेरी अपनी दौलत है, मेरी पूंजी है, मेरा वर्षा है। दुनिया में आप देखते हो किसी भी पुत्र को बाप की प्रॉपर्टी का कितना नशा होता है, ये मेरे बाप की, शब्द भी ऐसे ही आता है ना, कोई हाथ लगा के तो दिखाए। तो मुझे अपने गुण पे, शांति का गुण, प्रेम का गुण, पवित्रता का गुण, उस पे इतना नशा हो कि ये मेरे पिता की प्रॉपर्टी है, इसे कोई छीन के तो दिखाए। मैं किसी भी हालत में इसे छोड़ नहीं सकता। इतनी दृढ़ता हो एक एक गुण, तब हम कहेंगे कि मैंने शांति में सिद्धि प्राप्त कर ली, पवित्रता में सिद्धि प्राप्त कर ली। और उसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि हम शांति के दो बोल बोलेंगे और हमारी वो शांति दूसरे व्यक्ति में भी प्रवेश कर जाएगी, दूसरे को भी शांति का अनुभव हो जाएगा। और चौथा सब्जेक्ट है सेवा। हमारी दादी जानकी कहती है जिसने तीन सब्जेक्ट्स में सिद्धि प्राप्त कर ली, चौथे में तो अपने आप ही सिद्धि हो जाएगी, अर्थात सेवा तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। लेकिन सेवा के लिए बाबा ने हमें कुछ धारणाएं बताई हैं। एक तो सेवा में मैंपन से मुक्त होकर के जब हम सेवा करते हैं, करण करावन हार बाबा हैं और सेवा की चिंता भी बाबा को है। अगर मुझे सेवा की चिंता है तो इसका मतलब थोड़ा सा मेरा मैंपन भी है। अगर सेवा करने के बाद उसका वर्णन करने का शौक है तो इसका मतलब थोड़ा सा मेरा मैंपन भी है। लेकिन सेवा हुई पहले तो मैंने याद में की और उसके बाद होने के बाद करण करावन हार ने करवाई। थैंक यू बाबा, आपने मुझे यूज किया, मेरा भाग्य बनाया। इस तरह की अगर भावनाएं हैं तो समझ लीजिए मैं सेवा में निमित्त हूँ। और बाबा ने मुरली में कहा था कि मैंपन सेवा में बहुत बड़ी बाधा है। सेवा में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो दो मंत्र पक्के करने हैं, मैं निमित्त हूँ और मैं निर्माण हूँ। तो ये दो मंत्र हम पक्के करें। निमित्त भाव सर्व गुणों की खान है। जिसने निमित्त भाव को पक्का कर लिया उसके पास सारे गुण ऑटोमेटिक आ जाते हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा था निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये तीनों स्थितियां भी तब बनती हैं जब पहले निमित्त भाव अंदर में पक्का होता है। ओम शांति।